द्वितीय काल 1920 से 1944 ईस्वी अलेक्जेंडर कनिंघम के पश्चात के भारतीय पुरातत्व के द्वितीय काल को मार्शल काल भी कहा जाता है। जॉन मार्शल 22 फरवरी सन 1902 में भारत के पुरातत्व के महानिदेशक होकर आए। कार्यभार संभालने के एक वर्ष के अंदर ही उत्खनन और जीर्णोद्धार या परिरक्षण के संबंध में स्पष्ट नीति एवं निश्चित सिद्धांतों का निर्धारण किया गया। उत्खनन के क्षेत्र में अवैज्ञानिक तरीकों के कार्य करने के पृष्ठ संख्या 42 मार्शल विरुद्ध के प्राचीन स्मारकों के रखरखाव एवं संरक्षण के निश्चित नियम निर्धारित किए गए। महानिदेशक की वार्षिक आख्याओं एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वे केवल सरकारी रिकॉर्डों की सूची मात्र बनाने के पक्षधर नहीं थे। इन आख्याओं में से सामान्य अध्येता के लिए भी कुछ पाठ्य सामग्री प्रदान करना चाहते थे ताकि वह भारतीय पुरातत्व की नवीन शोधों की प्रगति से अवगत हो सके। इसके अतिरिक्त वास्तुकला के महत्वपूर्ण स्मारकों के जीर्णोद्धार रेस्टोरेशन तथा प्राचीन स्थलों के परिरक्षण पर जोर दिया। उत्खनन की जरूरत को महसूस किया गया तथा पुरातत्व के अधिकारियों द्वारा केवल साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर अनुसंधान की प्रवृत्ति को अनौचित्यपूर्ण कहा गया। महत्वपूर्ण उत्खनन कार्यों के सचित्र प्रकाशन को भी वरीयता प्रदान की गई। मार्शल की महत्वपूर्ण भावी योजनाओं में पुरातत्व संग्रहालयों एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए सुसज्जित पुस्तकालय की स्थापना का कार्य विशेष उल्लेखनीय था। उदाहरणार्थ सन 1903 से 4 के भारतीय पुरातत्व के बजट में पुस्तकालय के लिए 4000 रुपयों का प्रावधान किया गया था। पुरानिधियों एवं पुरावशेषों विशेषकर व्यक्तिगत स्वामित्व के स्मारकों को सुरक्षित रखने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए गए। 28 मई सन 1903 में भारत सचिव के पास प्रस्तावित विधेयक का एक मसौदा विचारार्थ भेजा गया। 14 अगस्त 1903 में इसको भारत सचिव की स्वीकृति प्राप्त हुई। इसके तुरंत बाद सन 1904 में प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम एंशिएंट मोनुमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट पास किया गया। इस अधिनियम के अनुसार शासन को प्राचीन स्मारकों के परिरक्षण पुरावशेषों के व्यापार तथा कुछ खास प्राचीन स्थलों के उत्खनन पर नियंत्रण के साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर पुरातत्व इतिहास एवं कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण वस्तुओं तथा स्मारक की सुरक्षा एवं अधिग्रहण पर अधिकार प्राप्त हो गया था। जॉन मार्शल के समय में केंद्रीय शासन में एक भ्रामक धारणा फैली हुई थी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एक अस्थायी विभाग है। सर्वेक्षण कार्य पूरा होते ही इसे समाप्त कर दिया जाएगा। 18 अप्रैल सन 1904 में मार्शल ने अपने प्रतिवेदन के माध्यम से पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को एक स्थायी विभाग बनाने का सुझाव दिया। भारत सरकार ने अपनी स्वीकृति के साथ इसे भारत सचिव के पास प्रेषित कर दिया। 29 जुलाई सन 1904 के अपने जवाब में भारत सचिव ने 10 या 15 वर्षों के कार्यकाल के लिए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को बनाए रखने की मंजूरी दी तथा आशा प्रकट किया कि अगर सर्वेक्षण विभाग को इसके बाद बनाए रखने की जरूरत पड़ी तो अपेक्षाकृत बहुत थोड़े से कर्मचारी पर्याप्त होंगे। इस समस्या की पुनः समीक्षा की गई और 9 नवंबर सन 1905 में भारत सरकार ने भारत सचिव के पास पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को स्थायी बनाने की पुनः सिफारिश की। पृष्ठ संख्या 43 भारत सचिव से 26 जनवरी सन 1906 में प्राप्त अनुमति के आधार पर 28 अप्रैल सन 1906 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को एक स्थायी विभाग बना दिया गया। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए 3 अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति की गई। डॉक्टर स्टेन कोनो को भारतीय पुरालिपि के विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया तथा उन्होंने महानिदेशक को उत्तर भारत के अभिलेखों के उद्वाचन में विशेष सहायता प्रदान किया। सन 1902 से 1928 तक मार्शल भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक रहे। 6 सितंबर सन 1928 में मार्शल ने अवकाश ग्रहण किया लेकिन उन्हें विशेष कार्याधिकारी के रूप में नियुक्त कर लिया गया। 19 मार्च सन 1931 में कार्य पूरा होने पर कुछ समय के लिए विशिष्ट कार्य के लिए पुनर्नियुक्ति कर लिया गया। अंततः 15 मार्च सन 1934 में मार्शल ने भारत से प्रस्थान किया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि लगभग 34 वर्षों तक मार्शल भारतीय पुरातत्व की गतिविधियों से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे। द्वितीय काल को पुरातत्व संबंधी गतिविधियों के आधार पर दो उपकालों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम उपकाल सन 1904 से लेकर 1920 तक एवं द्वितीय उपकाल सन 1921 से लेकर 1934 तक। प्रथम उपकाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी स्थिति को स्थायी बनाने के अतिरिक्त कई महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय कार्य किए। जुलाई सन 1911 में शिमला में प्राच्य विद्या विशारदों की एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्यकलापों की समीक्षा की गई। सम्मेलन ने इस बात की संस्तुति की, सुयोग्य युवा भारतीयों को भी वास्तुकला का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि उन्हें पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में नियुक्त किया जा सके। इसके पूर्व सन 1905 में ही यह निर्णय लिया गया था कि पुरातत्व विभाग के अधीक्षकों का चयन इंग्लैंड में और उप अधीक्षकों का चयन भारत में किया जाए, किंतु इस नीति का ठीक से परिपालन नहीं किया गया। यहाँ तक कि सन 1911 में भी यह मत प्रकट किया गया कि पुरालिपियों के विभाग को छोड़कर शेष अन्य उच्चतर पदों पर भारतीयों की नियुक्ति उपयुक्त नहीं है। मार्शल यूनान के क्लासिकल पुरातत्व के मर्मज्ञ एवं विशेषज्ञ थे, इसलिए प्राचीन भारतीय पुरावशेषों में यूनान तत्वों की खोज में उनकी विशेष दिलचस्पी थी। इसके लिए वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला के टीलों का सन 1913 में से लेकर 1934 के मध्य विस्तृत पैमाने पर उत्खनन कराया। इसके अतिरिक्त इसी अवधि में नालंदा, सांची, सारनाथ और भीटा नामक प्राचीन स्थलों पर भी उत्खनन कार्य करवाए गए। इन उत्खननों के फलस्वरूप बहुसंख्यक प्राचीन अभिलेख तथा मूर्तियां एवं अन्य बहुमूल्य पुरानिधियां प्रकाश में आई। इनके अतिरिक्त भारत के विभिन्न धर्मों से संबंधित अनेक पुरावशेषों के पृष्ठ संख्या 44 अस्तित्व की जानकारी हुई। सन 1915 में मार्शल ने भारत में पुरातत्व की प्रगति की एक समीक्षात्मक आख्या तैयार की, जिसको शासन के एक प्रस्ताव के अनुसार प्रकाशित किया गया। पुरातत्व के कार्यकलापों की यह एक संक्षिप्त किंतु सारगर्भित एवं सटीक प्रगति आख्या थी। सन 1917 में सर्वेक्षण विभाग के तकनीकी कर्मचारियों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि, पुरातात्विक रसायनज्ञ, आर्कियोलॉजिकल केमिस्ट की नियुक्ति के फलस्वरूप हुई। विवेच उपकाल 1904 से 1920 ईस्वी में एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह हुई कि कई देशी प्रिंसली स्टेट्स ने भी पुरातत्व में अपनी अभिरुचि प्रदर्शित की। मैसूर, त्रावणकोर, जयपुर, बड़ौदा, बड़ोदरा, कोचीन, हैदराबाद और ग्वालियर आदि ने अपने अपने स्वतंत्र विभाग स्थापित किए। पुरातत्व के कार्यों के विकास में इस प्रकार अनेक देशी राज्यों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन प्रथम उपकाल में तक्षशिला के उत्खनन के अतिरिक्त कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ। इसके दो प्रमुख कारण थे। प्रथमतः विश्व के अन्य देशों की ही भांति भारत में भी संग्रहालयों के सजाने के लिए आकर्षक पुरावशेषों को खोजने पर अधिक बल दिया गया। दूसरा कारण यह था कि अधिकांश पाश्चात्य विद्वानों की पूर्वाग्रह युक्त यह अवधारणा थी कि भारत के प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति का इतिहास मौर्य सम्राट अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व के शासनकाल तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से आरंभ होता था। केवल धार्मिक महत्व के पुरावशेषों एवं स्मारकों को ही इस धर्म प्राण देश की एकमात्र पुरातात्विक निधि मान लिया गया था। भारत के प्रागैतिहासिक तथा आद्य ऐतिहासिक कालों के विषय में अनुसंधान एवं अध्ययन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। यही नहीं, प्रथम उपकाल में प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ जाने के परिणाम स्वरूप पुरातत्व संबंधी गतिविधियां भी प्रभावित हुई। इस महासमर की समाप्ति पर अस्थिरता का जो वातावरण उत्पन्न हुआ, उससे पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छटनी कर दी गई। पुरातत्व संबंधी कार्यों की भी सीमा बांध दी गई। सन 1923 में वायसराय लॉर्ड इंचकेप ने पुरातत्व संबंधी बजट में 90% कटौती की संस्तुति की। पुरातत्व को समाप्त प्राय स्थिति से तत्कालीन भारत सचिव और पुरातत्व के महानिदेशक ने बचाने का सराहनीय कार्य किया, जिसके फलस्वरूप पुरातत्व के खर्च में केवल 22% की ही कटौती की गई थी। इसी बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उल्लेखनीय प्रगति की सप्त सैंधव क्षेत्र की, जिन नदियों एवं सरिताओं के किनारों पर वैदिक आर्यों ने निवास किया था, उन स्थलों के पुरातत्व की ओर ध्यान दिया गया। लेकिन इन विद्वानों ने इस बात की कल्पना तक नहीं की थी कि वैदिक आर्यों से लगभग 1000 वर्ष पूर्व के पुरातात्विक अवशेष अपने उद्धार के लिए पुराविद के कुदाल की प्रतीक्षा कर रहे थे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंट गोमरी साहिवाल जिले में रावी के पृष्ठ संख्या 45 किनारे स्थित हड़प्पा नामक प्राचीन स्थल को सन 1921 में खोज निकालने का श्रेय दयाराम साहनी को है। अगले वर्ष सन 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहन जोदड़ो के टीलों की खोज की, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु के किनारे पर स्थित है। ये दोनों पुरास्थल एक दूसरे से 640 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होते हुए भी एक ही सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र थे। इस सभ्यता को हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। मार्शल ने एच हरगिप्स, के एन दीक्षित और माधव स्वरूप वत्स की सहायता से सन 1922 से 1926 तक मोहन जोदड़ो के टीले का बड़े पैमाने पर उत्खनन करवाया। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। सन 1925 से 26 में खोज कार्य की धनराशि बढ़ाकर 90,000 रुपए कर दी गई, जो दो अगले वर्षों के लिए बढ़ाकर प्रतिवर्ष 2.5 लाख रुपए कर दी गई। मोहन जोदड़ो और हड़प्पा के उत्खननों ने भारत के प्राचीन इतिहास की पुनर्रचना में उत्खनन के महत्व को बहुत स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया। सन 1924 में जॉन मार्शल ने लिखा था कि इसके पूर्व भारत की गणना विश्व की नवीन देशों में की जाती रही है। कुछ पुरापाषाणिक एवं नवपाषाणिक औजारों एवं राजगृह की अनगढ़ पाषाण प्राचीरों को छोड़कर तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले की पुरातात्विक सामग्री नहीं मिलती थी। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बहुत पहले ही यूनान अपनी सभ्यता के चरमोत्कर्ष काल से गुजर चुका था और मेसोपोटामिया तथा मिस्र के शक्तिशाली महान साम्राज्यों का इतिहास विस्मृत हो चुका था। लेकिन अब हड़प्पा एवं मोहन जोदड़ो की खोजों से भारतीय सभ्यता की प्राचीनता की भी तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में रखी जा सकती है। पंजाब एवं सिंध के तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के वे लोग साफ सुथरे नगरों में निवास करते थे तथा शिल्प एवं कला कौशल के क्षेत्रों में अत्यधिक प्रगति कर चुके थे। ये लोग चित्राधर लिपि, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट के प्रयोग से भी परिचित थे। अक्टूबर सन 1928 में मार्शल के अवकाश ग्रहण करने पर एच हरगिप्स ने महानिदेशक का पद संभाला। सिंध में सफल खोज कार्य इस काल की एक प्रमुख उपलब्धि रही है। जुलाई 29 सन 1931 में राय बहादुर दयाराम साहनी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा। भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के खर्चों में कटौती और कर्मचारियों की छटनी कर दी गई। खोज शाखा को समाप्त कर दिया गया। वार्षिक रिपोर्टों का प्रकाशन कार्य भी काफी पिछड़ गया। 1 जून सन 1935 में जेएफ ब्लैकस्टन को महानिदेशक नियुक्त किया गया। भारत सरकार की सन 1935 के अधिनियम पृष्ठ संख्या 46 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार पुरातत्व को केंद्रीय सूची के विषयों में रखा गया। सिंध के एक स्वतंत्र प्रांत बन जाने के कारण उसे पश्चिमी मंडल के अलग करके सीमांत मंडल के साथ संबद्ध कर दिया गया। वर्मा के भारत से अलग हो जाने के कारण वहां का पुरातत्व संगठन भी भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से अलग हो गया। सन 1935 में पुरापाषाण काल से संबद्ध औजारों एवं तत्कालीन जलवायु के अध्ययन के लिए येल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों के संयुक्त तत्वावधान में एक अध्ययन दल भारत आया। डी टेरा और टीटी पेटरसन ने हिमालय क्षेत्र में सिंधु की सहायता सोन की घाटी तथा मध्य भारत में नर्मदा घाटी में महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किए। मार्च 21, 1937 में राय बहादुर के एन दीक्षित ने महानिदेशक पद का कार्यभार ग्रहण किया। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की अर्थव्यवस्था में क्रमशः सुधार न होने से सर्वेक्षण विभाग सीमित पैमाने पर अपनी कुछ योजनाओं को ही कार्यान्वित कर सका था। भारत सरकार के परामर्श पर लियोनार्ड वूली को पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कार्य में सुधार लाने के लिए आवश्यक सुझाव देने हेतु 1938 में आमंत्रित किया गया। वूली के समक्ष विचारार्थ विषय टर्म्स ऑफ रेफरेंस थे। एक, सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थलों या क्षेत्रों का उत्खनन। दो, खोज की सर्वोत्तम विधियां एवं माध्यम। तीन, खोज कार्य के प्रशिक्षण अथवा अधिकारियों के चयन की विधियां। चार, पुरातत्व से संबद्ध खोज एवं उत्खनन के विषय में अन्य प्रमुख मुद्दे। लियोनार्ड वूली 6 नवंबर सन 1938 से लेकर 11 फरवरी सन 1939 तक भारत में रहे। इस दौरान उन्होंने 45 स्थानों का निरीक्षण किया। अपनी रिपोर्ट में प्राचीन स्मारकों के परिरक्षण के कार्य एवं पुरालेखिकी को छोड़कर से समस्त क्रियाकलापों की कटु आलोचना की। वूली की रिपोर्ट में पुरातत्व संबंधी एक सलाहकार एडवाइजर ऑन आर्कियोलॉजी एवं पाषाण काल के विषय में अध्ययन के लिए दी प्रागितिहासविदों प्रीहिस्टोरियंस जिन्हें आद्य इतिहासविद प्रोटो हिस्टोरियंस कहा गया था कि नियुक्तियां एवं उत्खनन कार्य में विदेश एवं भारतीय संस्थाओं की भागीदारी के लिए यथेष्ट प्रोत्साहन की संस्तुतियां विशेष रूप से उल्लेखनीय थी, जिन पर शासन के तत्काल कोई कार्यवाही नहीं किया। वूले ने उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित अहित छत्र के टीले के उत्खनन का सुझाव दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में तत्कालीन महानिदेशक के एन दीक्षित के निर्देशन में सन 1940 से 44 के मध्य अहिच्छत्र के टीले का विस्तृत पैमाने पर उत्खनन किया गया था। अहिच्छत्र के उत्खनन में विभिन्न पात्र परंपराओं पोटेरी टाइप्स के वर्गीकरण क्लासिफिकेशन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया, ताकि गंगा के मैदान में विकसित होने वाली विभिन्न संस्कृतियों के अनुक्रम कल्चरल सीक्वेंस की सम्यक जानकारी हो सके। के एन दीक्षित ने गुजरात की साबरमती घाटी में खोज पृष्ठ संख्या 47 कार्य के लिए प्रथम भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन दल का संगठन किया था। इसके अतिरिक्त प्रादेशिक संग्रहालयों एवं भारतीय रियासतों के पुरातत्व विभागों के मध्य भी संपर्क सूत्र को पुनः कायम किया। दीक्षित के प्रोत्साहन से प्रेरित होकर कलकत्ता विश्वविद्यालय के दिनाजपुर जिले में स्थित बाणगढ़ के पुरास्थल के उत्खनन के लिए अनुज्ञा पत्र लाइसेंस प्राप्त किया। इस प्रकार उत्खनन कार्य में रुचि दिखलाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का गौरव प्राप्त किया। द्वितीय विश्वयुद्ध का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के क्रियाकलापों पर सीधा असर पड़ा। मितव्ययिता के नाम पर पुरातात्विक और अभिलेखिक प्रकाशनों के मुद्रण एवं प्रकाशन का कार्य बंद कर देना पड़ा। तृतीय काल 1940 से 1960 ईस्वी। इसके पश्चात सौभाग्य से सन 1944 में 4 वर्ष के अनुबंध पर आई ई मार्टिमर व्हीलर ने अनुबंध पर आर ई मार्टिमर व्हीलर ने राय बहादुर के एन दीक्षित के उत्तराधिकारी के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक का पद ग्रहण किया। व्हीलर उत्खनन कार्य में वैज्ञानिक विधियों के प्रबल पक्षधर थे। प्रोफेसर हंसमुख धीरजलाल सांकलिया के शब्दों में, व्हीलर के व्यक्तित्व में पुरातत्व के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्षों का मणिकांचन योग था। पुरातत्व संबंधी कार्यों में अनुभवी अनुशासन प्रिय एवं नियोजन संबंधी नैसर्गिक प्रतिभा के धनी व्हीलर ने भारत में पुरातन संबंधी महत्वपूर्ण परिवर्तनों तथा उसकी सर्वांगीण प्रगति के लिए अनेक कार्य किए। फरवरी 1945 तक पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संगठन में अनेक महत्वपूर्ण एवं अपेक्षित सुधार पूरे किए जा चुके थे। उत्खनन शाखा का पृथक एवं स्वतंत्र रूप से गठन किया गया, जिसके कार्यों की देखरेख के लिए प्रारंभ में उप अधीक्षक नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसका हर्जा कुछ समय पश्चात बढ़ाकर अधीक्षक कर दिया गया था। स्मारकों के संरक्षण के कार्य में अखिल भारतीय स्तर पर आवश्यक संयोजन एवं समन्वय कायम करने की दृष्टि से इस कार्य को केंद्रीय नियंत्रण में ले लिया गया। इसके लिए एक अधीक्षक, एक उपाधीक्षक एवं आवश्यक कर्मचारियों की व्यवस्था की गई। संरक्षण के कार्यों के लिए अधीक्षण अभियंता या कार्यपालन यंत्री एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की भी केंद्रीय पुरातत्व मुख्यालय हेडक्वार्टर्स में नियुक्ति की गई। पाषाण काल के पुरावशेषों के विषय में अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए उपाधीक्षक की श्रेणी का एक प्रागैतिहासविद नियुक्त किया गया। संग्रहालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी पदोन्नति की गई। पुरावशेषों के रासायनिक विश्लेषण कार्य में प्रगति लाने के लिए सहायक पुरातत्व रसायनविद की भी नियुक्ति की गई। अरबी फारसी के अभिलेखों के अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए व्हीलर के पूर्व अंशकालिक आधार पर उपाधीक्षक की नियुक्ति होती चली आ रही थी, जिसको स्थायी बना दिया गया। पृष्ठ संख्या 48। इन सब कार्यों के हाथ में ले लेने के फलस्वरूप पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के मुख्यालय के कार्यभार में अत्यधिक वृद्धि हो गई। इस उत्तरदायित्व का समुचित ढंग से निर्वाह करने के लिए सन 1945 की समाप्ति के कुछ माह पूर्व संयुक्त महानिदेशक का एक नया पद सृजित किया गया। सन 1946 में प्रकाशन अधीक्षक की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य पुरातत्व संबंधी प्रकाशन कार्यों की देखरेख एवं प्रकाशनों के उच्च स्तर को बनाए रखना था। सन 1945 में केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार परिषद सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ आर्कियोलॉजी का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य पुरातत्व संबंधी आवश्यकताओं एवं भावी योजनाओं के विषय में केंद्रीय शासन को परामर्श देना था। विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों एवं शैक्षिक समितियों तथा केंद्र शासन एवं प्रदेश शासन के प्रतिनिधियों को मिलाकर इस बोर्ड का गठन किया गया। इस समय से लेकर आज तक यह परिषद लगातार चली आ रही है। भारत के एक राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना के लिए समय समय पर विचार किए गए थे, लेकिन व्हीलर ने सन 1945 में इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए। मॉरिस गायर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसको राष्ट्रीय संग्रहालय की कार्यप्रणाली, प्रशासन तथा उसके संगठन के विषय में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन सन 1946 में शासन के समक्ष प्रस्तुत किया। तब से लेकर व्हीलर एवं उनके उत्तराधिकारी इस दिशा में विशेष रूप से सक्रिय रहे, जिसके परिणाम स्वरूप ही 15 अगस्त सन 1949 में राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन कार्य संपन्न हो सका। व्हीलर ने भारत में प्रशिक्षित पुरातत्व वेत्ताओं के अभाव को दूर करने के लिए ही के भी आवश्यक कदम उठाए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा कराए जा रहे तक्षशिला, अरिकामेडू और ब्रह्मगिरी एवं हड़प्पा के उत्खनन शिविरों में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों को भेजने का लिखित आग्रह कुलपतियों से किया गया। प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की गई तथा प्रशिक्षण काल का खर्च उठाने की व्यवस्था भी की गई। अन्वेषण, फील्ड वर्क तथा परीक्षण के लिए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिकारियों को पुरातत्व के क्षेत्र में जाने वाली नवीनतम शोध विधियों से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षणार्थ विदेश भेजने की भी व्यवस्था की गई। व्हीलर के पूर्वज जॉन मार्शल आदि ने जो उत्खनन करवाए थे, उन उत्खनन कार्यों में स्तरीकरण के सर्वविध सिद्धांतों को नहीं अपनाया गया था। व्हीलर स्तर विन्यास एवं त्रिविमितीय नापजोक पद्धति के प्रबल प्रक्षेपण थे। भारत के पुरातत्व संबंधी उत्खनन कार्यों में इन विधियों के अपनाए जाने का एकमात्र श्रेय व्हीलर को है। इस प्रकार भारत के पृष्ठ संख्या 49 पुरातत्व संबंधी उत्खनन कार्यों को विश्व के उच्च स्तरीय उत्खनन के समकक्ष बनाने का भरसक प्रयास किया गया। व्हीलर ने भारत आने के शीघ्र बाद ही ऐसा अनुभव किया कि यहाँ पर पुरातत्व संबंधी क्रियाकलापों का संतुलित ढंग से विकास नहीं हो पाया था। उत्तर भारत के प्राचीन बौद्ध स्थलों एवं स्मारकों के संबंध में पर्याप्त कार्य हो चुके थे, लेकिन दक्षिण भारत के पुरातत्व के विषय में कोई विशेष ठोस कार्य नहीं हुए थे। चौथी पांचवी शताब्दी ईस्वी के पूर्व के दक्षिण भारत के इतिहास के संबंध में कोई निश्चित कालानुक्रम ज्ञात नहीं था। इस विसंगति का प्रमुख कारण यह था कि न तो दक्षिण भारत में तिथियुक्त अभिलेख प्राप्त थे और न ही अन्य कोई विश्वसनीय प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध थे। दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों की बृहत पाषाण समाधियों के कालक्रम के संबंध में भी निश्चित रूप से ज्ञात नहीं था। व्हीलर रोमन पुरावशेषों एवं पुरानिधियों के विशेषज्ञ थे, इसलिए वे दक्षिण भारत में रोम निर्मित पुरावशेषों की खोज में निकले। पांडिचेरी के अपने एक दौरे के अवसर पर यहाँ रोमन एम्फोरे नामक मृदपात्र तथा एरेटाइन पात्र परंपरा से कुछ नमूने देखे। इनके आधार पर पांडिचेरी में स्थित अरिकामेडू नामक स्थल का 1945 में उत्खनन कार्य किया गया। इस स्थल के उत्खनन में अरेटियम और इटली से अन्य केंद्रों में 45 ईस्वी के लगभग निर्मित काचित लाल एरेटाइन नामक मृदभांड परंपरा के ठीकरे प्राप्त हुए। इनके अतिरिक्त अरिकामेडू के उत्खनन से लाल रंग का मिट्टी का एक रोमन दीप तथा कांच के बने रोमन कटोरे, रोमन रत्न एवं मनके भी मिले। अरिकामेडू का उत्खनन दक्षिण भारत के पुरातत्व के इतिहास में चिर स्मरणीय रहेगा। ईसा की प्रारंभिक दो शताब्दियों के दक्षिण भारत के पुरावशेषों के तिथिक्रम का निर्धारण संभव हुआ। इसके पश्चात व्हीलर ने कर्नाटक मैसूर प्रांत के चित्रदुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी नामक प्राचीन स्थल का सन 1947 में उत्खनन करवाया। ब्रह्मगिरी में तीन सांस्कृतिक कालों के अनुक्रम प्राप्त हुए। ये काल नीचे से इस प्रकार हैं: एक नवपाषाणिक संस्कृति का काल, दो बृहत पाषाण समाधि संस्कृति का काल, तीन आंध्र संस्कृति का काल। सबसे ऊपर वाली आंध्र संस्कृति प्रथम शताब्दी ईस्वी की चक्रांकित मृदभांड परंपरा से संबद्ध थी। इस स्थल के सभी कालों के बीच परस्पर एक अविच्छिन्न क्रम मिला था। इस आधार पर विभिन्न कालों का कालक्रम निर्धारित किया गया। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित चंद्रावल्ली नामक एक अन्य स्थल का भी सन 1947 में ही उत्खनन कराया गया, जहां तक सातवाहन राजवंश के बहुसंख्यक सिक्के प्राप्त हुए थे। व्हीलर के इन प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत के पुरातत्व का कालक्रम एवं सांस्कृतिक अनुक्रम निर्धारित करना संभव हो सका। अगस्त 15 सन 1947 को देश की स्वतंत्रता और विभाजन के ही रथ आरूढ़ होकर साथ साथ आए। देश के विभाजन के फलस्वरूप उस समय तक ज्ञात सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के सभी प्रमुख स्थल पाकिस्तान में चले गए। पृष्ठ संख्या 50 और प्रथम कोटि के मुसलमानी स्मारक भारत में रह गए, लेकिन सिंधु घाटी और गांधार क्षेत्र की क्षतिपूर्ति देशी रियासतों के भारत संघ में विलय के परिणाम स्वरूप बहुत कुछ अंश में हो गई, क्योंकि विलय से लगभग 4,09,600 वर्ग किमी अतिरिक्त क्षेत्र भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को प्राप्त हो गया। इस परिवर्तन के अनुरूप पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रशासनिक ढांचे में भी आवश्यक संशोधन एवं सुधार किए गए। अप्रैल 30 सन 1948 को मार्टिमर व्हीलर ने अपने उत्तराधिकारी एनपी चक्रवर्ती को पुरातत्व के महानिदेशक का भार सौंपकर अवकाश ग्रहण किया। चक्रवर्ती के कार्यकाल की एक प्रमुख घटना दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना को माना जा सकता है। सन 1948 में प्राचीन कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक सिद्ध हुआ। संग्रहालय 15 अगस्त 1949 को गवर्नमेंट हाउस वर्तमान राष्ट्रपति भवन में स्थापित किया गया था। अब भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय का नई दिल्ली में जनपद पर विशाल एवं सुंदर निजी भवन है, जिसमें संग्रहालय से संबंधित पुरावशेष संग्रहित तथा प्रदर्शित हैं। महानिदेशक एनपी चक्रवर्ती के कार्यकाल की दूसरी महत्वपूर्ण घटना दिसंबर 1948 में एफी जाइनर नामक प्रसिद्ध भूतत्वविद एवं प्रागैतिहासविद की भारत यात्रा को माना जा सकता है, जिसने अपने कुछ महीनों के प्रवास के दौरान भारत के पाषाण काल के इस समय तक ज्ञात प्रायः अधिकांश पुरास्थलों का निरीक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कुछ अधिकारियों और अन्य जिज्ञासुओं के साथ किया। स्वतंत्र भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू होने पर केंद्रीय शासन तथा प्रांतीय सरकार के बीच पुरातात्विक दायित्वों का भी बंटवारा हुआ। पुरातत्व के संबंधित मसलों का केंद्र राज्य तथा समवर्ती सूचियों में वर्गीकरण किया गया। जून 30 सन 1950 में एनपी चक्रवर्ती ने अवकाश ग्रहण किया। इसके पश्चात माधव स्वरूप वर्ष सन 1950 से लेकर सन 1953 तक महानिदेशक रहे। वत्स ने राष्ट्रीय महत्व को स्मारकों के परिरक्षण की विस्तृत आख्याएं तैयार करवाई जिससे उनकी मरम्मत के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सके। भारतीय संविधान की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सन 1951 में संसद ने प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरास्थल एवं ध्वंसावशेष राष्ट्रीय महत्व की घोषणा अधिनियम पारित किया। मार्च सन 1953 में अमलानंद घोष महानिदेशक हुए। मोहन जोदड़ो तथा हड़प्पा के पाकिस्तान में पड़ जाने के फलस्वरूप सिंधु सभ्यता से संबंधित कोई महत्वपूर्ण पुरास्थल भारत में नहीं बचा था। इसी क्रम को पूरा करने के लिए घोष ने राजस्थान, तत्कालीन पंजाब तथा गुजरात प्रदेश के विभिन्न पुरास्थलों का व्यापक पृष्ठ संख्या 51 पैमाने पर सर्वेक्षण कराया, जिसके फलस्वरूप अत्यंत उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए। राजस्थान के गंगानगर जिले में कालीबंगा, गुजरात के अहमदाबाद जिले में लोथल तथा पंजाब में रोपण आदि सैंधव सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण पुरास्थल खोज निकाले गए। उत्तर भारत में ऊपरी गंगा घाटी के पुरातत्व को ज्ञात करने के लिए ताम्र निधियों के संबंध में बीवी लाल ने विशेष अन्वेषण किया, जिसके अलावा सन 1950 से 52 के बीच मेरठ जिले में गंगा के तट पर स्थित हसीनापुर के टीले का बीबी लाल ने उत्खनन कराया। सन 1957 में पुरावशेषों एवं पुरास्थलों की खोज की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाथ में लिया, जिसके अनुसार गांव-गांव सर्वेक्षण विलेज टू विलेज सर्वे की योजना बनाई गई। इस कार्य में अपेक्षित प्रगति अभी तक नहीं हो पाई। सन 1958 में अपेक्षाकृत व्यापक एवं अधिनियम प्राचीन स्मारक तथा ध्वंसावशेष नाम से पुरातात्विक संपदा की देखरेख एवं सुरक्षा के लिए संसद ने पारित किया, जो 15 अक्टूबर सन 1959 में 59 से देश भर में लागू किया गया। इसी वर्ष सन 1959 में जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण स्मारकों को राष््ट्रीय महत्व के होने के कारण पुरातत्व संरक्षण ने अपने हाथ में ले लिया। जम्मू कश्मीर के पुरातत्व विभाग के प्रांतीय कर्मचारी को भी भारतीय पुरातत्व सर्वे में समायोजित किया गया। चतुर्थ काल सन 1961 से अद्यावधि। भारत में पुरातत्व के इतिहास का चौथा काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इस काल के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष सन 1961 में पूरे किए। इस उपलक्ष्य में नई दिल्ली में भारतीय पुरानिधियों की एक भव्य प्रदर्शनी धूमधाम से आयोजित की गई। एशिया के पुरातत्व पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी नई दिल्ली में इसी संदर्भ में किया गया। चतुर्थ काल में भी सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरास्थलों के अन्वेषण एवं उत्खनन का कार्य चलता रहा। गुजरात प्रदेश के कच्छ क्षेत्र, हरियाणा तथा पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों और जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में सिंधु सभ्यता से संबंधित अनेक नवीन पुरास्थल प्रकाश में आए। प्रमुख उत्खनित पुरास्थलों में गुजरात के कच्छ जिले से स्थित सुरकोटदा, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में भगवानपुरा तथा हिसार जिले में बनावली का उल्लेख इस संदर्भ में किया जा सकता है। सुरकोटदा एवं भगवानपुरा का उत्खनन जेपी जोशी ने कराया है। धौलाबीरा के उत्खनन में सिंधु सभ्यता के स्वरूप के विषय में नवीन जानकारी प्राप्त हुई है। ऐतिहासिक काल के पुरास्थलों का उत्खनन एवं अन्वेषण इस काल में भी हुआ। वाल्मीकि रामायण में वर्णित अयोध्या, नंदीग्राम, सिंगवेरपुर, भरद्वाज आश्रम पृष्ठ संख्या 52 तथा चित्रकूट आदि का उत्खनन बीबी लाल के नेतृत्व में रामायण में वर्णित प्राचीन स्थलों के पुरातत्व नामक राष्ट्रीय योजना के आधार पर किया गया है। दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में महाश्म समाधियों एवं उनसे संबंधित पुरास्थलों का उत्खनन किया गया। विदर्भ क्षेत्र में ताकल घाट, खापा महरझरी, नैकुंठ भागी महरी आदि महास्म संस्कृति से संबंधित पुरास्थलों का उत्खनन एसबी देव ने नेतृत्व में किया था। एसबी देव के नेतृत्व में किया गया भोरगांव एवं रायपुर का उत्खनन हुआ। चतुर्थ काल सुनियोजित एवं समस्या मूलक प्रागैतिहासिक अन्वेषण एवं उत्खनन के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दक्कन कॉलेज पुणे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग तथा एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग आदि के नाम इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। पुरापाषाण मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के विषय में नवीन खोजें की गई हैं। बेलन घाटी प्रवरा नदी की घाटी एवं राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों तथा काश्मीर घाटी में किए गए प्रागैतिहासिक अन्वेषण पुरापाषाणिक अनुसंधान की दृष्टि से उल्लेखनीय है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीम बैठका की गुफाओं की खोज एवं उत्खनन मध्य पाषाणिक संस्कृति की दृष्टि से उल्लेखनीय है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर का उत्खनन भी मध्य पाषाणिक अनुसंधान की दृष्टि से उल्लेखनीय है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित बगई खोर मोरहना पहाड़ तथा लेखहिया के उत्खनन महत्वपूर्ण है। गंगा घाटी में मध्य पाषाणिक संस्कृति की 20वीं शताब्दी ईस्वी के 80 के दशक की अत्यंत महत्वपूर्ण खोज मानी जा सकती है। गंगा नदी के उत्तर में स्थित मैदानी भाग में मध्य पाषाण काल के अस्तित्व के विषय में इसके पूर्व किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इस काल में प्रागैतिहासिक अनुसंधान के विषय में एक अन्य उल्लेखनीय बात अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को माना जा सकता है। बड़ौदा एवं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों के संयुक्त अभियान दल ने गुजरात एवं राजस्थान में प्रागैतिहासिक पुरातत्व विभाग एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित बर्कले विश्वविद्यालय के नेतृत्व विभाग के पुरातत्वविदों के संयुक्त दल ने मध्य प्रदेश के सीधी जिले में मध्य सोन नदी की घाटी में महत्वपूर्ण पुरातात्विक अनुसंधान किए। इस काल की पुरातात्विक गतिविधियों की प्रगति का संकेत इस काल में गठित पुरातत्व संबंधी संगठनों के आधार पर भी लगाया जा सकता है। सन 1967 में वाराणसी में इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। सन 1976 में सोसाइटी फॉर प्रीहिस्टोरिक एंड क्वार्टरनरी स्टडीज की स्थापना की गई। पृष्ठ संख्या 53। ये दोनों संस्थाएं प्रतिवर्ष नियमित रूप से अपना वार्षिक अधिवेशन बुलाती हैं, जिनमें देश एवं विदेश के पुरातत्वविदों को आपस में विचार विमर्श का अवसर मिलता है। इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी पुरातत्व एवं प्रीहिस्टोरिक सोसाइटी मैन एंड एनवायरनमेंट नामक शोध पत्रिकाएं प्रतिवर्ष प्रकाशित करती हैं। सन 1968 में अमलानंद घोष के रिटायर होने पर बीबी लाल सन 1968 से सन 1972 तक महानिदेशक रहे। अनेक ऐतिहासिक एवं प्रागैतिहासिक पुरास्थलों का अन्वेषण तथा उत्खनन इस दौरान देश के विभिन्न भागों में हुआ। सन 1972 से सन 1979 तक मधुसूदन नरहरि देशपांडे ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में पुरातात्विक गतिविधियों का सफलतापूर्वक संचालन किया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में शैलकृत गुफाओं की खोज इस काल की अत्यंत उल्लेखनीय उपलब्धि रही। इसके बाद सन 1979 से सन 1981 तक बीके थापर महानिदेशक रहे। सन 1981 में श्रीमती देवला मित्रा महानिदेशक हुई, जो सन 1983 तक इस पद पर रहे। एमएस नागराज राव सन 1983 में महानिदेशक नियुक्त हुए, जिनका अनुबंधित कार्यकाल सन 1986 में समाप्त हो गया। तत्पश्चात भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंधित भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय में सचिव आरसी त्रिपाठी ने पदेन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया। इसके बाद जेपी जोशी और एमसी जोशी महानिदेशक रहे। भारत में पुरातत्व के अनुसंधान के उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। देश के अनेक विश्वविद्यालयों में पुरातत्व का अध्यापन हो रहा है। क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा दिए जाने के फलस्वरूप नवीनतम जानकारी से विद्यार्थियों को अवगत कराने की समस्या उत्पन्न हो रही है। समय समय पर शिक्षकों एवं शोध छात्रों के व्यवहारिक प्रशिक्षण की अत्यंत आवश्यकता है, जिसका दायित्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उठाने की आवश्यकता है। कतिपय अपवादों को छोड़कर उत्खनन कार्य से संबंधित विवरणों रिपोर्ट्स का प्रकाशन प्रायः समय से नहीं हो पा रहा है। इससे और संबद्ध व्यक्तियों एवं संस्थाओं द्वारा तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का दायित्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। पुरावशेषों की सुरक्षा, पुरास्थलों के उत्खनन आदि के विषय में सजग रहने के को विशेष आवश्यकता है। पुरा निधियों की चोरी छिपे विदेशों में जाने की समस्या भी उत्तरोत्तर विकट होती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण से प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों के अतिरिक्त के लिए अस्तित्व के लिए एक भिन्न प्रकार का संकट उत्पन्न हो रहा है। भारतीय पुरावशेष अधिनियम मानव के अतीत संबंधी समस्त अध्ययन एवं तथा अनुसंधान साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या पर प्रधान रूपेण आधारित है। पुरातात्विक साक्ष्य मानव इतिहास को एक नया आयाम प्रदान करते हैं। 19वीं शताब्दी ईस्वी तक पृष्ठ संख्या 54 सुरक्षित एवं बचे खुचे प्राचीन स्मारकों की तोड़फोड़ तथा पुरावशेषों की लूटपाट को अनुचित नहीं समझा जाता था। प्राचीन एवं तथा ऐतिहासिक स्मारकों और पुरावशेष देश की सांस्कृतिक धरोहर हैं। इनको नष्ट होने से बचाने की आवश्यकता है। इस बात की अनुभूति शासन एवं सरकारों को धीरे धीरे हुई। इसके बाद पुरावशेषों और स्मारकों की सुरक्षा आदि के विषय में आवश्यक कानून बनाए गए। भारतीय पुरावशेष संबंधी अधिनियम एंटीक्वेरियन लॉज ऑफ इंडिया प्राचीन पुरावशेषों और पुरास्थलों की सुरक्षा एवं देखरेख के लिए सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी ईस्वी से में बनाए गए अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893 के सुझाव पर सन 1878 में पुरानिधि निखात अधिनियम ट्रेजर ट्रो एक्ट तैयार पारित किया गया। इस कानून के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को जमीन के अंदर गड़ा हुआ पुराना निखात मिले और उसका मूल्य 10 रुपए से अधिक हो तो उस व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह इसकी सूचना तत्काल संबंधित जिले के जिलाधिकारियों को दे। निखात को सरकारी मालखाना ट्रेजरी में जमा करें अथवा जिलाधिकारियों को उपयुक्त जमानत दे। यदि कोई व्यक्ति निखात मिलने पर उसकी सूचना जिलाधिकारी को नहीं देता और प्राप्त पुरावशेष को शासकीय कोषागार में नहीं जमा करता अथवा इसमें हेरा फेरी अल्टरेशन करता है या उसे छिपाता है तो ऐसी स्थिति में उसे 1 वर्ष की सजा या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। जिसकी भूमि में पुरावशेष मिलता है उसके मालिक एवं निखात पाने वाले व्यक्ति के बीच में यदि पहले से ही कोई समझौता न हो तो निखात का बंटवारा 1:1 के अनुपात में किया जा सकता है। यदि भूस्वामी अपना दावा पेश करने के लिए प्रस्तुत नहीं होता है तो निखात पाने वाले व्यक्ति को ही पूरा निखात दिया जा सकता है। यदि निखात 100 वर्ष से अधिक पुराना है तो जिलाधिकारी निखात को बांटने के स्थान पर भारत सरकार की ओर से उसका अधिग्रहण कर सकता है। अधिग्रहण करने पर पुरावशेष की उचित कीमत निखात पाने वाले व्यक्ति को मुआवजे के रूप में पाने का अधिकार है। इस कानून के आधार पर ही भारत सरकार को उन प्राचीन मूर्तियों सिक्कों आदि को प्राप्त करने में सफलता मिली जो आज भारत पाकिस्तान तथा बांग्लादेश के विभिन्न संग्रहालयों की शोभा बढ़ा रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अज्ञान एवं लोभवश बहुत से लोग पुरावशेष के मिलने पर उनको छिपा जाते हैं, धातु की बनी हुई वस्तुओं को गलाकर नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार इतिहास संबंधी अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य अज्ञानवश प्रतिवर्ष नष्ट कर दिए जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जनता को विश्वास में लिया जाए तथा उनमें पुरावशेषों के विषय में जागरूकता पैदा की जाए, क्योंकि भारत के इतिहास की रचना के लिए पुरावशेष अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य है। पृष्ठ संख्या 55 भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक जॉन मार्शल के कार्यकाल में पुरावशेषों तथा स्मारकों विशेषकर व्यक्तिगत स्वामित्व के स्मारकों की सुरक्षा के लिए अधिनियम बनाए गए। स्मारकों की सुरक्षा से संबंधित विधेयक बिल का मसौदा ड्राफ्ट 28 मई सन 1903 में भारतीय सचिव के पास विचारार्थ भेजा गया, जिसको 14 अगस्त 1903 में भारतीय सचिव की स्वीकृति प्राप्त हुई। इसके बाद अगले वर्ष 1904 में प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम एंशियंट मोन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार भारत को प्राचीन स्मारकों के परिरक्षण, पुरावशेषों के व्यापार तथा कतिपय महत्वपूर्ण पुरास्थलों के उत्खनन पर नियंत्रण के साथ ही साथ आवश्यकता पड़ने पर पुरातत्व इतिहास के इतिहास एवं कला के दृष्टि से उल्लेखनीय पुरावशेषों की सुरक्षा एवं अधिग्रहण का अधिकार प्राप्त हुआ। इस अधिनियम में सन 1932 में कतिपय संशोधन किए गए, जिससे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बाहर के व्यक्तियों, विशेषकर विदेशियों को उत्खनन एवं अनुसंधान की अनुमति दी जा सके। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति प्राप्त करके सन 1935 से 36 में अमेरिकन स्कूल ऑफ इंडिक एंड ईरानियन स्टडीज एवं बोस्टन संग्रहालय की ओर से अर्नेस्ट मैके ने चाहुंदड़ों का उत्खनन कराया। सन 1935 में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने पश्चिमोत्तर भारत में सोहन नदी की घाटी में प्रागैतिहासिक से संबंधित अन्वेषण कार्य किए। केंद्रीय शासन को प्राचीन स्मारकों की रक्षा करने तथा उत्खनन को सुचारू एवं विधिवत ढंग से संचालित करने में इस अधिनियम से लगभग 55 वर्ष तक विशेष सहायता मिलती रही। स्वतंत्रता के बाद की बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों के पश्चात इसकी उपयोगिता घटने लगी। सन 1958 में संसद द्वारा पारित सन 1959 से लागू प्राचीन स्मारक का पुरावशेष अधिनियम के सन 1904 के कानून का स्थान ले लेने के बाद इस अधिनियम का महत्व समाप्त हो गया। पुरावशेषों एवं पुरानिधियों के निर्यात को नियोजित करने के लिए भी कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। सन 1947 में पुरावशेष निर्यात नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार 100 वर्ष से अधिक पुराने पुरावशेषों का निर्यात शासन से लाइसेंस प्राप्त करके ही किया जा सकता है। बिना लाइसेंस के निर्यात दंडनीय अपराध घोषित किया गया। स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरावशेषों के विषय में समाज के उत्तरदायित्व के प्रति भी काफी सजग एवं संवेदनशील थे। सन 1919 तथा 1935 के भारतीय अधिनियमों में पुरातत्व को केंद्रीय शासन के अंतर्गत रखा गया था, किंतु 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का जो संविधान लागू हुआ उसमें पुरातत्व को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। केंद्रीय सूची में उन प्राचीन तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों एवं पुरास्थलों को रखा गया जिन्हें संसद द्वारा पारित अधिनियम से राष्ट्रीय महत्व का पृष्ठ संख्या 56 घोषित किया जाएगा। राज्य सूची में वे शेष समस्त पुरावशेष एवं स्मारक आएंगे जिन्हें संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित नहीं किया। समवर्ती सूची में केंद्रीय सूची में दर्ज स्मारकों को छोड़कर से सभी आएंगे जिन पर केंद्रीय शासन एवं प्रदेश सरकारों का समान रूप से अधिकार होगा। इस संवैधानिक प्रावधान को ध्यान में रखते हुए संसद ने सन 1951 में प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक और पुरास्थल एवं ध्वंसावशेष राष्ट्रीय महत्व की घोषणा अधिनियम 1951 पारित किया। एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एक्ट 1951, जो स्मारक सन 1904 से ही राष्ट्रीय महत्व के घोषित चले आ रहे थे, उनके अतिरिक्त भूतपूर्व देशी रियायतों में स्थित कतिपय उन स्मारकों को भी इस श्रेणी में सम्मिलित किया गया जिन पर स्वतंत्रता के पूर्व भारत सरकार का अधिकार नहीं था। बदली हुई राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के कारण पुरानी कानूनी व्यवस्था अपर्याप्त सिद्ध होने लगी। अतएव सन 1958 में प्राचीन स्मारक और ध्वंसावशेष अधिनियम नाम से एक अपेक्षाकृत व्यापक कानून संसद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य स्मारकों की सुरक्षा एवं सुंदरता की रक्षा करना है। यह अधिनियम उन सभी स्मारकों एवं पुरास्थलों पर लागू होता है जिन्हें सन 1951 में राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा चुका था। यह अधिनियम 15 अक्टूबर सन 1959 में देश भर में लागू किया गया। इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि केंद्रीय शासन आवश्यकता अनुसार अन्य स्मारकों एवं पुरास्थलों को भी केंद्रीय सूची में सम्मिलित कर सकता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक घोषित हो जाने के बाद भी इनमें जनता के निर्बाध प्रवेश की व्यवस्था है। कतिपय स्मारक इसके अपवाद है जिनमें नाम मात्र का प्रवेश शुल्क लिया जाता है, किंतु 15 वर्ष में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए ऐसे स्मारकों में भी निशुल्क प्रवेश की व्यवस्था है। रक्षित स्मारकों के अंदर किसी प्रकार का की सभा बैठक सार्वजनिक समारोह करने की अनुमति नहीं है, किंतु यदि किसी स्मारक का उपयोग धार्मिक पूजा के लिए होता रहा है तो रक्षित स्मारक घोषित होने के बाद भी इसकी छूट रहेगी। रक्षित स्मारक में विज्ञापन एवं किसी माल की बिक्री तथा प्रचार करने के रोक बिना लाइसेंस प्राप्त किए हुए इन स्मारकों में गाइड के रूप में कार्य करने पर भी पाबंदी है। अगर केंद्रीय शासन यह अनुभव करता है कि रक्षित स्मारक के पास खदान की खुदाई अथवा किसी इमारत के निर्माण कार्य पर रोक लगाना आवश्यक है तो रोक लगाई जा सकती है। रक्षित स्मारक के आसपास के क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र अथवा नियमित क्षेत्र रेगुलेटेड एरिया घोषित करके इस प्रकार की रोक लगाने की व्यवस्था है। निषिद्ध क्षेत्र में किसी भी परिस्थिति में खदान की खुदाई पृष्ठ संख्या 57 अथवा भवन निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। नियमित क्षेत्र में लाइसेंस जारी करके स्पष्ट प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी जा सकती है। अवैध निर्माण को शासन हटवा सकता है। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध उचित कार्यवाही तथा दंड की व्यवस्था है। इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 3 माह की सजा या 5,000 जुर्माना अथवा सजा एवं जुर्माना दोनों हो सकते हैं। यदि कोई रक्षित स्मारक किसी की भी निजी संपत्ति है तो केंद्रीय शासन उस स्मारक के रखरखाव एवं मरम्मत आदि के संबंध में संबंधित व्यक्ति से लिखित समझौता कर सकता है, लेकिन यदि उसका मालिक समझौता करने से इनकार करता है अथवा समझौते की शर्तें के पालन करने में आनाकानी करता है तो ऐसी स्थिति में शासन मरम्मत आदि के अधिकार स्वयं ग्रहण कर सकता है जिससे कि स्मारक की रक्षा हो सके। मालिक के व्यक्तिगत अधिकारों को सीमित भी कर सकता है। अगर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक को ऐसा प्रतीत होता है कि स्मारक का मालिक कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे स्मारक की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाएगा अथवा स्मारक के आसपास या उसके ऊपर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करता है तो इन परिस्थितियों में महानिदेशक उस व्यक्ति को ऐसा न करने का आदेश जारी कर सकता है। सन 1958 के अधिनियम के अनुसार किसी संरक्षित पुरास्थल प्रोटेक्टेड साइट का उत्खनन और उसमें से खनिजों का की खुदाई खदान लगाने आदि की किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं है, लेकिन सामान्य किसी कार्य किया जा सकता है। किसी भी रक्षित पुरास्थल के ऊपर कोई भवन आदि भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं बनाया जा सकता है। अगर बिना अनुमति के कोई निर्माण कार्य होता है तो निर्माणकर्ता व्यक्ति के ही खर्च पर उसको हटाया जा सकता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक से लाइसेंस प्राप्त किए बिना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सक्षम अधिकारियों को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति अथवा संस्था रक्षित पुरास्थल का उत्खनन नहीं करा सकती है। रक्षित अथवा अरक्षित किसी भी पुरास्थल पर उत्खनन के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी आरक्षित पुरास्थलों का भी उत्खनन करा सकते हैं। केंद्रीय शासन की स्वीकृति के बिना कोई भी प्रदेश सरकार न तो उत्खनन करा सकती है और न ही किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उत्खनन कार्य के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इस अधिनियम के अनुरूप प्रांतीय सरकारें भी कानून बना सकती हैं और राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले स्मारकों एवं पुरास्थलों को रक्षित घोषित कर सकती हैं। कई प्रांतीय सरकारों ने इस प्रकार की कानून भी बनाए हैं। यदि किसी रक्षित अथवा अरक्षित पुरास्थल का मालिक कोई व्यक्ति है तो केंद्रीय शासन उस व्यक्ति से उत्खनित पुरावशेष क्रय कर सकता है। पृष्ठ संख्या 58। इस प्रकार इस अधिनियम के प्रावधान अत्यंत विस्तृत है। देश की पुरातात्विक संपदा की रक्षा के लिए यह अधिनियम अत्यंत उपयोगी है। पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृतियां अधिनियम 1972 भारत से कला राशि के बड़ी मात्रा में चोरी छिपे विदेश जाने से रोकने के लिए संसद ने सन 1972 में पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृतियां अधिनियम 1972 द एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 पारित किया, लेकिन यह अधिनियम किन्हीं कारणों से तत्काल लागू नहीं किया गया। अप्रैल 5 सन 1976 को एक घोषणा के द्वारा सिक्किम को छोड़कर शेष संपूर्ण भारत में इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। कोई भी मानव निर्मित वस्तु जैसे मूर्तियां, सिक्के, चित्र, हथियार, कवच, हौदे, हाथी, हाथ एवं लकड़ी का कामदार सामान आभूषण, वस्त्र, फर्नीचर, पांडुलिपियां आदि यदि 100 वर्ष से अधिक पुरानी हैं और उसका ऐतिहासिक, कलात्मक, धार्मिक, राजनीतिक एवं संग्रहालयी महत्व है तो वह पुरावशेष समझी जाएगी। ऐतिहासिक महत्व की 75 वर्ष पुरानी पांडुलिपियों को भी पुरावशेष कहा जाएगा। कोई भी व्यापारी बगैर लाइसेंस प्राप्त किए पुरावशेषों एवं बहुमूल्य कलाकृतियों का व्यापार नहीं कर सकता है। लेकिन जो व्यापारी नहीं है, केवल कला संग्रह करता है, उनके लिए भी प्रावधान है कि वे अपनी कलाकृतियों को पंजीकृत करा ले। लाइसेंस देने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 11 अनुज्ञापन अधिकारी लाइसेंसिंग ऑफिसर नियुक्त किए हैं, जिनके कार्यालय श्रीनगर, दिल्ली, बड़ौदा, आगरा, पटना, कलकत्ता, भोपाल, मुंबई, हैदराबाद, बंगलौर तथा चेन्नई में हैं। प्रत्येक लाइसेंसिंग ऑफिसर के अधीनस्थ कई रजिस्ट्रेशन अधिकारी कार्यरत हैं। यह नियम सरकारी संग्रहालयों, शासकीय अभिलेखागारों तथा सरकारी कार्यालयों में सुरक्षित कलाकृतियों पर लागू नहीं होता है। बहुमूल्य कलाकृतियों के पंजीकरण की विधि अत्यंत सरल है। प्रत्येक कलाकृतियों के लिए एक फॉर्म भरा जाता है और साथ में छोटे आकार के 3 फोटो देने पड़ते हैं। पंजीकरण अधिकारी इन्हें अपने रजिस्टर में अंकित करा लेते हैं। इसके बाद कलाकृति और उसकी प्रमाणित एक फोटो उसके मालिक को वापस कर दी जाती है। जो लोग कलाकृतियों का व्यापार करते हैं उनको इसी तरह का एक अन्य फॉर्म भरना पड़ता है। यदि पुरावशेष तथा कलाकृति बहुत छोटी है अथवा कम मूल्य की है तो एक साथ 3-4 को रखकर फोटो खींची जा सकती है और इस प्रकार खींचे गए फोटो के आधार पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। अधिनियम का उद्देश्य यहाँ यह बात स्पष्ट कर देना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है कि इस अधिनियम का एकमात्र उद्देश्य यह पता लगाना है कि भारत में कुल कितनी कलाकृतियां हैं और वे कहाँ पर हैं। सरकार का इन्हें छीनने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। पंजीकरण के बाद संबद्ध कलाकृतियां उसके मालिक को वापस कर दी जाती है। पृष्ठ संख्या 59। पुरावशेषों एवं बहुमूल्य कलाकृतियों के मालिकों को यह अधिकार है कि वे लोग ऐसी कृतियों को आजन्म अपने पास रख सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए अपने घर में छोड़ सकते हैं, वे चाहे तो किसी को उपहार में भी दे सकते हैं तथा भारत के अंदर किसी को बेच भी सकते हैं। इस प्रकार ऐसी कृतियों पर उन मालिकों का भी पूर्ण स्वामित्व रहेगा। यह बात दूसरी है कि इस अधिनियम के द्वारा सरकार को यह अधिकार अवश्य प्राप्त है कि यदि कलाकृति बहुत मूल्यवान हो तो सरकार गजट में घोषणा करके उसका अधिग्रहण कर सकती है, परंतु ऐसा कदम असाधारण परिस्थिति में ही उठाया जाएगा और तब सरकार मालिक को उस कलाकृति का उचित मूल्य, जो विशेषज्ञ निर्धारित करेंगे, मुआवजे के तौर पर देगी। लेकिन ऐसी कोई भी कलाकृति जो धार्मिक स्थल पर पूजी जा रही है उसका अथवा उसका निर्माता कलाकार जीवित है तो सरकार किसी भी दशा में उसका अधिग्रहण नहीं कर सकेगी, भले ही वह कितनी ही दुर्लभ कृति क्यों न हो। इन रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंसिंग अधिकारियों को यह अधिकार भी दिया गया है कि लिखित एवं विश्वसनीय रिपोर्ट मिलने पर वे किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था से पूछताछ कर सकते हैं, तलाशी ले सकते हैं अथवा घर एवं दुकान पर छापा डाल सकते हैं। भारत के बाहर कोई भी कलाकृति तब तक नहीं भेजी जा सकती जब तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक अथवा उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियों की अनुमति न मिल जाए। स्वयं भारत सरकार एवं उसके समस्त प्रतिष्ठानों को भी यह अनुमति लेनी अनिवार्य है। कलाकृतियों के व्यापारियों द्वारा सभी कलाकृतियों के रजिस्टर बनाने की व्यवस्था है। जब भी कोई कृति बेची या उपहार दी जाए अथवा अन्य किसी कारण से हस्तांतरित की जाए तो इसकी लिखित सूचना लाइसेंसिंग अधिकारी को देना चाहिए। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि सन 1970 में यूनेस्को की महासभा ने अवैध पुरावस्तु आयात, निर्यात और बिक्री को रोकने की एक नियमावली तैयार की है जिसमें प्रत्येक सदस्य देश का सहयोग आवश्यक है। अभी तक केवल 24 देशों ने ही इस पर हस्ताक्षर किए हैं। विडंबना यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी और फ्रांस जैसे अमीर देशों ने अभी तक इस नियमावली पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जनमानस में भारतीय पुरातत्व के प्रति अभिरुचि उत्पन्न की जाए, लोगों को अपने देश के गौरवशाली एवं समृद्धशाली अतीत के प्रति सजग बनाया जाए, क्योंकि जन समर्थन के बिना प्रजातंत्र में कोई कार्य बहुत दिनों तक केवल सरकारी संरक्षण में नहीं चल सकता है।